हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 47 एंड 48। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञान तिम्रांडस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदकूपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अत्यैव मे विशतो मानस राजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। स्मरतव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चेत्। सर्वे विद्धि निषेधाय एतयोरेव किंकर। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभु व्यतमिदं तत्राग्रह न परह। किरात हूणा द्रपुलिंद पुलकशा आबीर शुंभा यवनाख सादय। येने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। करारविन्दे नपदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् कालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण केश गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जी हवे पिबस्वा मृतुमेतदेव गोविंद दामो धर्माधवीति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके पञ्चतत्त्वात्मकं क्लेशं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद अध्याय 15 जिसका शीर्षक है पांडवों का सामयिक प्रस्थान। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि युधिष्ठिर महाराज ने जब भगवान श्री कृष्ण के इस धराधाम से चले जाने के विषय में सुना तो उनको ऐसा लगा कि अब क्योंकि इस जीवन से इस शरीर से भगवत सेवा संभव नहीं है। कृष्ण जब तक थे तब हम उनके लिए राज्य करते थे, उनकी प्रसन्नता के लिए युद्ध किया, उनको संतुष्ट करने के लिए, उसको आनंदित करने के लिए इस शरीर के द्वारा हम कार्य करते थे। अब कृष्ण नहीं रहे तो किसके लिए करें, तो फिर इससे बेहतर है इस शरीर का समाप्त कर देना। तो उन्होंने अपने कार्य संपन्न, जैसे हमने कल पढ़ा कि ते साधु कृत सर्वास्ता कि उन्होंने अपने सारे कार्य समाप्त कर लिए थे जो भी कार्य उनको करना था, जिसके लिए जीव इस संसार में आता है तो कुछ कर्तव्य होते हैं, तो अपने सारे कर्तव्यों का पालन कर लिया था। और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज निकल गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे भाइयों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, बस निकल गए क्योंकि वो जानते थे कि मैंने अपने जीवन में अपने समस्त परिवार को इतना सुंदर तरीके से प्रशिक्षित किया है तो वो अवश्य ही सही डिसीजन ले सकेंगे। तो उसके बाद उनके भाइयों ने भी उनका अनुगमन किया और आगे सूत गोस्वामी श्लोक नंबर 47 और 48 में बताते हैं तद्ध्यानो दृक्तया भक्त्या विशुद्ध दिशणा परे तस्मिन् नारायण पदे एकांत मतयो गतिम् अवापुर दुरवापाम्ति असद्भिर् विषयात्मभिः विधूत कल्मषास्थानम् विरजे नात्मनैव हि तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्ध दिशणा परे तस्मिन्नारायणपदे एकांत मतयोगतिम् अवापुर दुरवापांति असद्भिर् विषयात्मभिः विदूतकल्मषस्थानम् विरजि नात्मनैव हि तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्ध दिशणा परे तस्मिन् नारायणपदे एकांत मतयोगतिम् अवापुर् दुरवापांति असद्भिर् विषयात्मभिः विधूतकल्मषस्थानम् विरजि नात्मनैव हि शब्दार्थ तद्ध्यान तत् मनवः ध्यान यानी ध्यान उद्रिक्तया मुक्त होकर भक्त्या भक्ति से विशुद्ध दिशणा विशुद्ध यानी शुद्ध दिशणा यानी बुद्धि से परे यानी आध्यात्म में तस्मिन् नारायण पदे तस्मिन् मतलब उस नारायणन भगवान श्री कृष्ण के पदे यानी शरण कमल में एकांत मतयो गतिम एकांत जो एक भगवान में स्थित हैं उनके गतिम यानी गंतव्य अवापुर दुरवापम अवापुर यानी प्राप्त किया दुरवापम यानी प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है ते असत भी ते मतलब उनके द्वारा असत भी यानी जो भौतिकतावादी होते हैं उनके द्वारा विषय आत्मा भी भौतिक आवश्यकताओं में लीन होते हैं और विद्युत कलमश यानी धोए विद्युत यानी धोया हुआ कलमश यानी भौतिक मल स्थानम वह दाम विरजेन यानी रजोगुण से रहित आत्मना यानी ठीक उसी शरीर से ही निश्चय ही अनुवाद इस प्रकार निरंतर स्मरण से उत्पन्न भक्तिमयी शुद्ध चेतना के द्वारा उन्होंने परम नारायण भगवान श्री कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक को प्राप्त किया यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान धरते हैं भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गौलोक वृंदावन धाम कहलाता है और उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता है जो जीवन की भौतिक विचारधारा में लीन रहते हैं लेकिन समस्त भौतिक कलमश से पूर्णतया शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे ध्यान से सुनिएगा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सतो रजो तथा तमो गुण से मुक्त हो तथा आध्यात्म को प्राप्त हो तो वह शरीर परिवर्तन किए बिना ही जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है श्री सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास नामक अपनी कृत में कहा है कि कोई भी व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के पद पर दर्शन में आध्यात्मिक अनुशासनात्मक कर्म करके द्विजन्म ब्राह्मण की सिद्धि प्राप्त कर सकता है ठीक उसी तरह एक रसायन शास्त्री रसायन प्रक्रिया से पीतल जैसे किसी धातु को सोने में बदल देता है
अतिव शरीर परिवर्तन के बिना ही ब्राह्मण बनने या बिना शरीर परिवर्तन के भगवत धाम जाने में वास्तविक मार्गदर्शन का महत्व होता है। श्री जीव गोस्वामी की टीका है कि ही शब्द इस सत्य की पुष्टि करता है कि इस वास्तविक स्थिति के विषय में कोई संदेह नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता से भी 14.26 श्रीला जीव गोस्वामी के इस कथन की पुष्टि होती है। जब भगवान कहते हैं कि जो अविचल भाव से नियमित भक्ति करता है वह तीन गुणों के कलमस को पार करके ब्रह्म सिद्धि प्राप्त कर सकता है और जब अनन्य भक्ति द्वारा ब्रह्म सिद्धि की को और भी उन्नत बनाया जाता है तो इसमें जरा भी संदेह नहीं रह जाता कि उसे बिना शरीर परिवर्तन के गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त होता है। जैसा कि हम भगवान के बिना शरीर परिवर्तन के अपने धाम लौटने के संबंध में पहले ही बता चुके हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। जैसा कि हमने कल पढ़ा श्लोक नंबर 46 में कि जो युधिष्ठिर महाराज के छोटे भाई थे वो चारों अर्जुन भीम नकुल और सहदेव उन्होंने भी अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों पर चलना ही अपने लिए वास्तविक लाभकारी माना। और फिर आगे बताया कि ते साधु कृत सर्वार्था ज्ञात्वा त्यंतिकम आत्मना कि वो सब अपने कार्य तो कर चुके थे अतएव उनका यह निश्चय जो उन्होंने निश्चय लिया था वो ठीक ही था। और उन्होंने क्या किया मनसा धारयामासुर वैकुंठ चरणाभुज हृदय से वैकुंठ के रहने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान प्रारंभ किया। और जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान को एकाग्र किया भगवान का ध्यान करने लगे तो क्या हुआ तद ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या। जब हम भौतिक जगत की वस्तुओं का ध्यान करते हैं तो भगवान कहते हैं भगवद गीता 2.62 में ध्यायते विषयान् पुंस संगस्तेषु पजायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोधो भिजायते। तो जब भौतिक वस्तुओं का ध्यान करते हैं तो क्या होता है ध्यायते विषयान् पुंस संगस्तेषु पजायते उनके साथ संग करने की इच्छा होती है ना उसको प्राप्त करने की। और संग करने की इच्छा जो है संगा संजायते कामा वो काम में परिवर्तित हो जाती है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। उसी तरह से जब हम भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हैं तो ध्यान से आगे बढ़ता है क्या होता है ये अभी बता रहे हैं तद ध्यानो धृक्तया भक्त्या। जब हम भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हैं तो भक्ति उत्पन्न होती है। इंद्रिय विषयों का ध्यान करने से क्या होता है तो जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो उससे हमारी भक्ति उत्पन्न होती है। और भक्ति से क्या होता है विशुद्ध देशणा का मतलब होता है बुद्धि। हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है क्योंकि बुद्धि जो है वो वास्तव में हमारी इंद्रियों के घोड़ों की सारथी है। जैसे हमने पढ़ा था पहले कि इंद्रियां जो है वो एक रथ के घोड़े हैं पांच घोड़े हैं और मन उसकी लगाम है और मन की लगाम खींचने वाली बुद्धि वो सारथी है। तो अगर बुद्धि शुद्ध होगी तो समझो कि वो रथ सीधा अपने वास्तविक लक्ष्य, जैसे कहा विशुद्ध धिष्णा परे, परे यानी आध्यात्मिक लोक में, जहां पर उसका वास्तविक लक्ष्य है, वास्तविक डेस्टिनेशन प्लेस है, वहां तक जाएगी। लेकिन यदि बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो फिर हम अपने वास्तविक लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। तो बुद्धि शुद्ध करने के लिए क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। और भक्ति उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए? ध्यान, अर्थात भगवान का स्मरण। तो अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि स्मरण कैसे हो, क्योंकि गीता में भगवान भी यही कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच। यदि आपको इस भौतिक जगत में माया के साथ युद्ध करना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप मुझे स्मरण करो। और इसी तरह से माया के साथ युद्ध करते करते भगवान कहते हैं अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत समय में आपको केवल मेरा स्मरण करना है, और अगर ऐसा करोगे तो यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अर्थात भगवान को अंत समय में स्मरण करने के लिए आवश्यक है कि हमें उस स्मरण की क्रिया को सीखना है ना। ऐसे ही नहीं होगा, मतलब ये स्मरण ऐसे नहीं होता है कि हम लोग बस हमारी इच्छा हो और हम उसको याद कर ले, नहीं, उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। और शास्त्र कहता है स्मरण कैसे हो सकता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। ये तरीका है कि स्मरण कब होगा? जब आप सबसे पहले श्रवण करोगे। और जब हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते 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 अभ्यास हो जाएगा, श्रवण करते हैं तो श्रवण के द्वारा शब्द हमारे कान से हृदय की ओर जाते हैं, और जब हृदय के अंदर की गंदगी समाप्त होती है, क्या है गंदगी? भौतिक वस्तुओं की आसक्ति। और जब भौतिक वस्तुओं की आसक्ति समाप्त होती है तो फिर हम कीर्तन करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कीर्तन करने के लिए आपके अंदर दो क्वालिटी होनी चाहिए, तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सही श्रोना अमानी नमान देह कीर्तनी है सदा हरि। आपको राह में गिरे हुए घास के तिनके से भी अधिक विनम्र होना चाहिए। विनम्रता कसौटी है इस बात की कि आप सदैव कीर्तन कर सकते हो। और अमानी ना मान देना, दूसरों को मान देने की इच्छा और अपने लिए मान की उपेक्षा ना करना, और वृक्ष की तरह सहर्ष होना। यदि वृक्ष को हम काट भी देते हैं तो भी वो हमारे लिए लाभदायक होता है, यदि हम उसको पत्थर मारते हैं तो वो हमें फल देता है। तो ऐसा यदि बन जाएंगे कि चाहे हमारे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे और हमारे मन में केवल यही इच्छा हो कि सबका कल्याण हो, तो ही हम सदैव कीर्तन कर सकते हैं। श्रवण के लिए एकमात्र योग्यता क्या? कि आपके हृदय में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे श्रवण करना है, बस। और कोई योग्यता नहीं, इच्छा होगी तो आप श्रवण करोगे, और जब श्रवण करोगे तो आप कीर्तन कर सकोगे। और कीर्तन करने के लिए दो क्वालिटीज, तृणादपि सुनी से ना तरोरपि सहुषण, और ये दो क्वालिटीज जब हमारे अंदर आ जाएंगी और हम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करेंगे, उसके बाद विष्णु स्मरणम, फिर भगवान का स्मरण बहुत सहज हो जाएगा, फिर हम आसानी से भगवान को स्मरण कर सकेंगे। और जब स्मरण हो जाएगा और भगवान की भक्ति ध्यान लगाएंगे तो भक्ति दृढ़ होती जाएगी, दृढ़ होते होते फिर बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और हम आध्यात्म को प्राप्त करें विशुद्ध दिशणा परे। और फिर तस्मिन नारायण पदे एकांत मतयो गतिम, तस्मिन फिर उसके बाद क्या होगा? नारायण पदे, नारायण यहाँ पर भगवान को कहा गया, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है नारायण। वह नर कहते हैं मनुष्य को, एक पुरुष को नर कहा जाता है, और वह पुरुष, वह परम पुरुष जो समस्त नरों पर आयन करे, समस्त पुरुषों का को अध्यक्ष करे, सबको कंट्रोल में रखे, समस्त मनुष्यों को कंट्रोल करने वाला नारायण, उस परम पुरुष यानी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में एकांत मत हो। ये बहुत आवश्यक है कि मति एकांत होनी चाहिए, जो एक भगवान में स्थित हो। मति जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होनी चाहिए कि चलो थोड़ा सा स्मरण उसका भी कर लिया जाए, नहीं, एकांत मत हो। गीता में भगवान कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एके हकुरुनंदना बहुशाखायनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनां। व्यवसायात्मिका बुद्धि, जो बुद्धि केवल एक कृष्ण के अंदर स्थित होती है, एके हकुरुनंदना, जो भगवान पर पूरा दृढ़ संकल्प के साथ सिर्फ एक कृष्ण के ऊपर टिकी हो, पूरी अटूट श्रद्धा हो भगवान के अंदर, दृढ़ श्रद्धा हो भगवान के अंदर, भगवान के शब्द, भगवान के नाम के अंदर एकदम हृदय से विश्वास हो, ऐसा विश्वास हो, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति को ले सर्व कर्म कृत हुए। बस मैं कृष्ण का नाम ले रहा हूँ, मैं कृष्ण को स्मरण कर रहा हूँ, मैं कृष्ण को याद कर रहा हूँ, मैं कृष्ण के विषय में श्रवण कर रहा हूँ, तो सर्व कर्म कृत है, मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये होती है व्यवसायात्मिका बुद्धि। और बहुशाखायनंता से बुद्धयो अव्यवसायिनां, जिसकी बुद्धि अव्यवसायी होती है, दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होती है, वो तो अनेक शाखाओं में बटी हुई है, कभी किसी के विषय में, कभी किसी के विषय में, लेकिन ऐसी बुद्धि से कभी भी गतिम एकांत मतयो गतिम, ये वास्तविक जो जीव की गति है, जो गंतव्य है, वो तभी प्राप्त होगा जब हम 1.8 हो जाएंगे, एक एकलो ईश्वर कृष्ण और सब भृत। जब ये बात समझ में आ जाएगी तब भी तस्मिन् नारायण पदे एकांत मतयो गतिम, फिर हमें वास्तविक गति प्राप्त होगी। अवापु मतलब प्राप्त होती है। तस्मिन् नारायण पदे एकांत मतयो गतिम अवापु, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण में एकाग्रचित होकर लीन हो जाते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं, उन्हीं को वास्तविक गंतव्य प्राप्त होता है। गतिम अवाप्तो, लेकिन वैसे दुरवापा मतलब प्राप्त करना बहुत कठिन है, ये वाली जो गति है भगवत प्राप्ति की वो बहुत कठिनाई से प्राप्त होती, किसको, ते असद भीर विषय आत्मा भी, उन लोगों के लिए जो असद भी हैं, असद भी मतलब भौतिक, जो भौतिक इच्छाएं हैं, असद भी वो भौतिकतावादी व्यक्ति, जो विषय आत्मा भी सदैव विषय, जो भौतिक आवश्यकता है उनमें ही लीन रहते हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तो जैसे भगवान ने कहा बहुशाखायनंताश्च, उनकी बुद्धि तो एक पॉइंटेड हो ही नहीं सकती ना, वो समझते हैं मुझे इससे आनंद मिलेगा, इससे आनंद मिलेगा, इससे आनंद, ये प्राप्त कर लूं तो आनंद मिलेगा, वो लड़की प्राप्त हो जाए तो उससे आनंद मिलेगा, उससे विवाह हो जाए वो उससे आनंद मिलेगा, ये बंगलो प्राप्त हो जाए इससे आनंद मिलेगा, तो उसकी बुद्धि तो क्योंकि शुद्ध नहीं है, है ना, जैसे ये कैसे, ये गंतव्य, ये डेस्टिनेशन पर हम आएंगे कैसे, जब हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, लेकिन क्योंकि उसने भगवान का ध्यान किया ही नहीं है, वो तो असत भेर विषय आत्मा भी, वो तो भौतिकतावादी है और विषय वासनाओं के अंदर ही अपनी बुद्धि को लगाए हुए हैं, तो उसकी बुद्धि 1.8 नहीं होती है, इसके लिए वह वास्तविक गंतव्य प्राप्त करना दुर्वापम, वो बहुत ही कठिन है, उससे प्राप्त नहीं हो सकता। यानी कि यदि हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो हमें 1.8 होना पड़ेगा, कि भगवान के श्री चरणों के अंदर ध्यान लगाना पड़ेगा और इसी से हम अपने वास्तविक डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। आगे सूत गोस्वामी कहते हैं विदूत कल्मशा, क्योंकि भौतिक कल्मश से पूरी तरह से मुक्त हो गए थे पांडव जो थे, वो भौतिक कल्मश से पूरी तरह मुक्त हो गए थे, इसीलिए स्थानम, स्थानम का मतलब है कि धाम में, भगवान के धाम में उनको जाने के लिए परमिशन प्राप्त हुई, क्योंकि विदुष कल्मशा उनके सारे कल्मश जो थे वो समाप्त हो गए थे। अब इसका मतलब ये है कि हमें भौतिक कल्मश को पूरी तरह से समाप्त करना होगा, तभी ही हम भगवान के धाम में जाने के योग्य बनेंगे। हम सबकी इच्छा यही है ना कि हम भगवान के धाम को प्राप्त करें। तो इसके अंदर जो भगवान के धाम को प्राप्त करने की विधि लिखी हुई है, वो विधि हमें पूरी करनी है। क्या विधि है? भगवान का ध्यान करना है सबसे पहले, कंटिन्यूस। भगवान भी कहते हैं, अनन्य चेताः सततम् यो माम स्मरति नित्यः तस्याहम् सुलभः पार्थ। जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। और ध्यान करने के लिए क्या है? पहले श्रवण करेंगे, उसके बाद कीर्तन करेंगे, उसके बाद स्मरण। और जब ध्यान करेंगे तो भक्ति उत्पन्न होगी, भक्ति उत्पन्न होगी तो बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि शुद्ध होगी तो आध्यात्मिक स्थान को प्राप्त करेंगे। और वह आध्यात्मिक स्थान क्या है? तस्मिन् नारायण पदे एकांत मतयो गतिम्। फिर हम भगवान के श्री चरणों के अंदर हमारा मन एकांत प्राप्त करेगा, एकमात्र भगवान के चरणों में ही लगेगा, और अपनी वास्तविक डेस्टिनेशन, अपना वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और वह जगह प्राप्त करना उनके लिए बहुत कठिन है जो असत भीर विषय आत्मा भी, जो असत भीर भौतिकतावादी होते हैं और विषय वासनाओं में लगे रहते हैं। लेकिन क्योंकि पांडवों का विदुत कल्मशास्थानम, उनकी भौतिक कल्मश से पूरी तरह से वो मुक्त हो गए थे। वीरजी का क्या मतलब है? कि रजोगुण से रहित थे। अब उन्होंने देखते हैं कि हम इतनी मुश्किल से उन्होंने राज्य प्राप्त किया था, और जैसे ही उनको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण धराधाम से चले गए, उन्होंने अपना राज्य तुरंत छोड़ दिया। एक सेकंड के लिए भी सोचा नहीं कि इस राज्य को प्राप्त करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी। और ये पांडव जो थे वो अपने राज्य को ज्यादा समय तक भोगे भी नहीं। जैसे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जो युद्ध हुआ था, उसके जल्द ही परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था, और परीक्षित महाराज अभी तक थोड़े बड़े ही हुए थे कि उनको राज्य दे दिया था। मतलब ज्यादा दिनों तक राज्य को भोगा नहीं, क्योंकि उनके अंदर रजोगुण लेश मात्र भी नहीं था। रजोगुण उन्होंने पूरा समाप्त कर, वीरजी का मतलब है कि रजोगुण बिल्कुल खत्म हो गया था। और आत्मना एव का मतलब होता है, आत्मा जो शब्द होता है उसका मतलब समय और सेंटेंस के हिसाब से होता है। यहाँ पर कहते आत्मना एव, मतलब इसी शरीर से ही, यानी निश्चय ही इसी शरीर में उन्होंने धाम को प्राप्त किया। पुरुष से संतुष्ट नहीं होती है, उसी तरह अव्यभिचारिणी भक्ति उसको कहते हैं कि जो कभी विचलित नहीं होती है, जो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होती है। भगवान कहते हैं मुझे वैसी भक्ति अगर कोई करता है, माम से यो अव्यभिचारेण भक्ति योगी न सेवते, जो अव्यभिचारी अविचलित भक्ति के द्वारा मुझे सेवन करता है, मतलब कि मेरी सेवा करता है, स गुणान सम अतीतान, वो ही समस्त गुणों से अतीत हो सकता है, विरक्त हो सकता है, सारे गुणों से लांग जाता है सारे गुणों को। और जब एक जीव निर्गुण हो जाता है, समस्त गुणों को लांग जाता है, तो क्या होता है? भगवान कहते हैं ब्रह्म भूयाय कल्पते, फिर वो ब्रह्म के स्तर पर पहुंचता है, फिर मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता, वह इस भौतिक शरीर से होते हुए भी आध्यात्मिक बन जाता है, क्योंकि वो भगवान की अव्यभिचारी भक्ति करता है। तो पांडव जो थे वो भगवान के ऐसे ही शुद्ध भक्त थे। तो क्योंकि यहाँ श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब हमें किसी शुद्ध भक्त शुद्ध वैष्णव का सानिध्य प्राप्त होता है तो वो हमें दीक्षा देता है और ब्राह्मण बना देता है ना। हम साधारण होते हैं लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण दीक्षा देकर हमें ब्राह्मण बना देता है। ठीक उसी तरह से जो रसायन शास्त्री होते हैं वो पीतल जैसे किसी धातु को सोने में परिवर्तित कर देते हैं। अतएव इस शरीर परिवर्तन के बिना ही ब्राह्मण बनने या बिना शरीर परिवर्तन के भगवान के धाम में जाने में वास्तविक मार्गदर्शन का महत्व होता है। वास्तविक अगर कोई व्यक्ति मिल जाता है जो वास्तव में इस योग्य है, जो आपको ऐसा निर्देशन दे कि आप सह शरीर चले जाओ भगवान के धाम में, मतलब आपके समस्त आप गुणातीत हो जाओ, शुद्ध भक्ति आपको प्राप्त हो जाए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आपका शरीर भी आपका आध्यात्म। ऐसा होता है जब ध्रुव महाराज का अंतिम समय आया था, वो जब उनको लेने के लिए भगवान ने बहुत ही सुंदर विमान भेजा था। ध्रुव भक्त को विमान में पार्षद लेने के लिए आए थे और उस समय जब ध्रुव महाराज जा रहे थे तो मृत्यु ने बोला उनको, मृत्यु साक्षात मृत्यु देह धारण करके उनके पास आई और उनसे कहा कि देखिए ध्रुव महाराज, मुझे आपका भगवान के धाम में जाने में कोई आपत्ति नहीं है, आप बेशक जाइए, मगर ये आपका भौतिक शरीर है ना, उसको तो आपको इस भौतिक जगत में ही छोड़ के जाना पड़ेगा ना। ये भौतिक शरीर तो ये तो नियम है कि आप इसको नहीं लेके जाओ। लेकिन ध्रुव महाराज का जो भौतिक शरीर था वो भौतिक नहीं था, क्योंकि वो आध्यात्मिक में स्थित होकर भक्तिमाम से यो व्यभिचारिण भक्ति योगिन, भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति के कारण उनका शरीर जो था वो आध्यात्मिक बन गया था, स्पिरिचुअल बन गया था। तो फिर ध्रुव महाराज ने कहा, अभी बात ही कर रहे थे लेकिन उसी समय क्या देखा कि उनका जो विमान था वो ऊपर था, जो विमान आया था वो ऊपर था और वो चढ़ नहीं, मतलब इतना चढ़ नहीं सकते थे, उनको एक जगह चाहिए थी, स्टेप चाहिए ना, सीढ़ी जैसा, ऐसे स्टेप पे पांव रख के फिर ही वो चढ़ सकते थे। लेकिन उन पार्षदों ने और भगवान की आकाशवाणी हुई कि मृत्यु को बोला कि नहीं, ये ध्रुव महाराज जो है वो शरीर त्याग के नहीं जाएंगे, इनका शरीर आध्यात्मिक बन गया है, अभी वो इसी शरीर के द्वारा मेरे धाम में आएंगे। तो ध्रुव महाराज को मृत्यु ने बोला चलो ठीक है आप जाओ, लेकिन क्योंकि वो चढ़ नहीं सक रहे थे ऊपर, इसलिए मृत्यु ने अपने सिर को झुकाया, साक्षात मृत्यु साक्षात काल सिर को झुका कर खड़ा हो गया और कहा कि आप मेरे सिर पर पांव रखिए और वो अपने विमान पर चढ़ के जाइए। मतलब भगवान के जो भक्त होते हैं वो इतने प्योर होते हैं, इतने शुद्ध होते हैं कि साक्षात मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव महाराज जो हैं वो भगवान के विमान में बैठे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री जीव गोस्वामी की टीका है कि ही शब्द इस तथ्य की पुष्टि करता है और वास्तविक स्थिति के विषय में कोई संदेह, ही भगवान ने कहा, सॉरी सूत गोस्वामी ने कहा, विदूत कल्मषास्थानम् विरजे नात्मनैव हि, निश्चित ही इसी शरीर के द्वारा उसे वास्तविक गति प्राप्त हुई। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी आगे बताएं, जब भगवान कहते हैं कि जो अविचल भाव से नियमित भक्ति करता है वह तीनों गुणों के कल्मष को पार कर लेता है और ब्रह्म सिद्धि प्राप्त करता है, तो सगुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो ब्रह्म पद को प्राप्त करता है और जब अनन्य भक्ति द्वारा ब्रह्म सिद्धि को और भी उन्नत बनाया जाता है तो इसमें जरा भी संदेह नहीं रह जाता कि उसे बिना शरीर परिवर्तन के गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त होता है। जैसा कि हम भगवान के बिना शरीर परिवर्तन के अपने नाम लौटने के संबंध में सुनते हैं। अभी ये जो यहाँ पर भागवतम में पांडवों के सह शरीर जाने के विषय में बताया गया है, महाभारत में ऐसे नहीं बताया गया। महाभारत में बताया जाता है कि वो जंगल में जाते हैं सब साथ में और फिर धीरे धीरे एक एक करके सबकी मृत्यु होती है, लेकिन यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि सब एक साथ गए, तो हमें इसी भागवतम के कथन के साथ जाना है, क्योंकि यह भागवतम जो है वो समस्त वेदों का पका हुआ फल है और इसका निर्णय ही अंतिम निर्णय है। तो वह साक्षात उसी शरीर के साथ कैसे गए, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत् प्रवर्तेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, जब जीव समस्त प्रकार की उपाधियों को से विमुक्त हो जाता है। उपाधियां क्या है, मैं सबसे पहली उपाधि है कि मैं ये शरीर हूं। जब जीव यह रियलाइज करता है कि मैं ये शरीर हूं, तो शरीर से रिलेटेड समस्त संबंध जो है वो उसकी उपाधि बन जाते हैं। जैसे मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पत्नी हूं, मैं बॉस हूं, मैं इस स्वामी हूं, मैं प्रेमी हूं, मैं कुछ भी हूं, मैं वेश्य हूं, शूद्र हूं, ब्राह्मण हूं, ब्रह्मचारी हूं, गृहस्थ हूं, ये सारी उपाधियों को चैतन्य महाप्रभु कहते ना हम विप्र न च नरपति न वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपति न वानस्थो यतुर्वा। मैं कुछ नहीं हूं, न ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, ब्रह्मचारी न गृहस्थ हूं, न वानप्रस्थ हूं और न ही संन्यासी हूं। किंतु प्रोद्धान्य कलह पूर्ण अमृत स्तब देह गोपी भर्तुक पद कमल दास दास दासानुदास। तो जब सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत् प्रवर्तेन निर्मला, फिर आप निर्मल बन जाते हो, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, विशुद्धि विशुद्ध देशणा परे, फिर क्या होता है, आप शुद्ध हृदय से शुद्ध बुद्धि से समस्त उपाधियों से मुक्त होकर क्या करते हो, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। ये वास्तविक कार्य है जीवन, ऋषिकेन इंद्रियों के द्वारा, ऋषि कहते इंद्रियों को, और इंद्रियों के द्वारा क्या करते हैं, ऋषिकेश सेवनम, केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। तो सेवनम भक्ति रुच्यते, वास्तव में ये उत्तम भक्ति है, और इस इतनी जब हम तीव्रता से भगवान की भक्ति करते हैं तो अवश्य हमें वास्तविक लक्ष्य प्राप्त होता है, वास्तविक गंतव्य प्राप्त होता है, क्योंकि हमारा चित्त जो है वो भगवान के श्री चरणों में लगता है। तस्मिन् नारायण पदे एकांत मतयो गतिम अवापुर, फिर आपको वास्तविक गति प्राप्त हो जाती है, लेकिन दुर्वापाम ते असत भीर विषयात्मा भी, लेकिन ये गति उनके लिए बहुत कठिन है जो कि भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन विदुत कर्म शास्त्रानम विरजेनात्मा वे ही, लेकिन क्योंकि पांडवों की सारी दुर्भावना समाप्त हो गई थी, भौतिक कर्म से पूरी तरह से मुक्त हो गए थे और अपने सारे गुणों से मुक्त हो गए थे, इसीलिए उन्होंने सशरीर भगवत धाम को प्राप्त किया। हरे कृष्ण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करूं। हरे कृष्ण।